सत्य क्या है? संख्या चार,
आपका हृदय व्याकुल न हो।
मिलर राइट इतिहास की शुरुआत में 1790 में दानियल की पुस्तक में उलाई नदी का दर्शन मुहर से खोला गया, जिससे ज्ञान में वृद्धि हुई, जिसने उपासकों की दो श्रेणियों को परखा और प्रकट किया। उलाई का दर्शन परमेश्वर के लोगों के लिए आंतरिक संदेश का प्रतिनिधित्व करता है, जैसा कि प्रकाशित वाक्य के अध्याय 2 और 3 की 7 कलीसियाओं द्वारा दर्शाया गया है। 1790 में आरंभ हुए भविष्य सूचक इतिहास के अंत में 12 अक्सबी अगस्त 1894 एक सिटर कैंप मीटिंग में, जब यहूदा के गोत्र के सिंह ने एक गुप्त सत्य पर से अपना हाथ हटा लिया, तब मध्यरात्रि पुकार का संदेश मुहर से खोला गया, जिससे ज्ञान में वृद्धि हुई, जिसने उपासकों की दो श्रेणियों को परखा और प्रकट किया। 1985 में जब जैसा कि दानियल गलनकाप निरतित है इस सानु याद रहे हैं, पूर्व सोवियत संघ का प्रतिनिधित्व करने वाले देशों को पोप तंत्र और संयुक्त राज्य अमेरिका ने बहा दिया, तब दानियल की पुस्तक में हिद्देकेल नदी के दर्शन की मुहर खोली गई, जिससे ज्ञान में वृद्धि हुई, जिसने उपासकों के दो वर्गों की परीक्षा ली और उन्हें प्रकट किया। हिद्देकेल का ये दर्शन परमेश्वर की प्रजा के शत्रुओं के बाहरी संदेश का प्रतिनिधित्व करता है, जैसा कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक की 7 मुहरों में दर्शाया गया है। 1989 में आरंभ हुई उस भविष्य सूचक इतिहास की समाप्ति पर जुलाई 2023 के अंतिम 2 सप्ताहों से यहूदा के गोत्र के सिंह ने एक छिपे हुए सत्य पर से अपना हाथ हटाकर मध्यरात्रि की पुकार के संदेश की मुहर खोलने की प्रक्रिया आरंभ की, जिससे ज्ञान में वृद्धि हो रही है, जो परीक्षा ले रही है और अंततः परमेश्वर की प्रजा के बीच उपासकों के दो वर्गों को प्रकट करेगी। यूहन्ना के 14वें अध्याय की 1 आयत में मसीह शिष्यों को प्रोत्साहित करते हैं कि उनके हृदय व्याकुल न हो।
तुम्हारा हृदय व्याकुल न हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास करते हो, मुझ पर भी विश्वास करो। यूहन्ना 14:1।
कुछ ही घंटों के भीतर मसीह को गिरफ्तार कर लिया गया और उसके थोड़े ही बाद उन्हें क्रूस पर चढ़ाया गया, दफनाया गया और वे पुनर्जीवित हुए। पिता के पास आरोहित होने के बाद वे अपने शिष्यों के पास लौट आए।
और जब वे इस प्रकार बातें कर रहे थे तो यीशु स्वयं उनके बीच आ खड़े हुए और उनसे कहा, तुम पर शांति हो। पर वे भयभीत और घबराए हुए थे और समझे कि उन्होंने किसी आत्मा को देखा है। और उसने उनसे कहा, तुम क्यों घबराए हुए हो और तुम्हारे मन में विचार क्यों उठते हैं? लूका 24:33-38।
सुधार की प्रक्रिया में पहली निराशा तब होती है जब परमेश्वर के लोग पूर्व में प्रकट की गई किसी सत्य को भूल जाते हैं। क्रूस के संकट में उनका भय और निराशा प्रकट होने से 1 सप्ताह से भी कम समय पहले यीशु ने जो उनसे कहा था शिष्य उसे भूल चुके थे। पहली निराशा के बाद प्रतीक्षा का एक समय आता है, जिसे 10 कुंवारियों के दृष्टांत में दूल्हे की अनुपस्थिति द्वारा दर्शाया गया है। यीशु ने शिष्यों से सीधे कहा था कि वो अपने पिता के पास जा रहा है, परंतु लौट आएगा। जो पूर्व ज्ञान उन्होंने शिष्यों को दिया था वो उन्हें संकट से अभिभूत होने से नहीं रोक सका। 10 कुंवारियों के दृष्टांत के संदर्भ में संकट वो स्थिति है जहां चरित्र प्रकट होता है परंतु विकसित नहीं होता। यीशु ने शिष्यों को चुना और नियुक्त किया था और उन्होंने संकट से पहले उन्हें यही सत्य बताया था।
तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और ठहराया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, ताकि जो कुछ तुम पिता से मेरे नाम में मांगो वो तुम्हें दे। यूहन्ना 15:16।
फिर भी भले ही वे चुने गए थे, चुना जाना उन्हें संकट से दब जाने से नहीं रोक सका।
संकट में चरित्र प्रकट होता है। जब आधी रात को ये गंभीर घोषणा हुई, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे मिलने बाहर निकलो, तो सोती हुई कुंवारियां अपनी नींद से जाग उठी और ये स्पष्ट हो गया कि किसने उस घटना के लिए तैयारी की थी। दोनों ही दल बेखबर पकड़े गए, पर एक आपात स्थिति के लिए तैयार था और दूसरा बिना तैयारी के पाया गया। परिस्थितियों से चरित्र प्रकट होता है। आपात स्थितियां चरित्र की असली धातु प्रकट करती हैं। कोई अचानक और अप्रत्याशित विपत्ति, शोक या संकट, कोई अनपेक्षित बीमारी या वेदना, कुछ ऐसा जो आत्मा को मृत्यु के आमने सामने ला खड़ा करे, चरित्र की सच्ची आंतरिकता प्रकट कर देगा। तब यह स्पष्ट हो जाएगा कि परमेश्वर के वचन की प्रतिज्ञाओं पर वास्तव में विश्वास है या नहीं। ये भी स्पष्ट हो जाएगा कि आत्मा अनुग्रह से संबलित है या नहीं, कि दीपक के साथ पात्र में तेल है या नहीं। परीक्षाएं सब पर आती हैं। परमेश्वर की परीक्षा और परख के समय हम कैसा आचरण करते हैं, क्या हमारे दीपक बुझ जाते हैं या हम उन्हें अब भी जलाए रखते हैं। जो अनुग्रह और सत्य से परिपूर्ण है, उसके साथ हमारे संबंध के द्वारा क्या हम हर आपात स्थिति के लिए तैयार हैं। 5 बुद्धिमान कुवारी कन्याएं अपना चरित्र 5 मूर्ख कुवारी कन्याओं को नहीं दे सकीं। चरित्र का निर्माण प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं करना होता है। रिव्यू एंड हेराल्ड, 17 अक्टूबर 1895।
प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के प्रथम पदों में पहचाना गया यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य कलीसिया के लिए अंतिम चेतावनी संदेश है, और उसके बाद संसार के लिए भी। वो प्रकाशन अनुग्रह काल के समापन से ठीक पहले यहूदा के गोत्र के सिंह द्वारा अनमोहरित किया जाता है, जिसकी पहचान प्रकाशित वाक्य अध्याय 5 में उस एकमात्र के रूप में की गई है जो मोहरबंद पुस्तक खोलने के योग्य है।
और प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, रो मत, देख, यहूदा के गोत्र का सिंह, दाऊद का मूल, उस पुस्तक को खोलने और उसकी 7 मोहरें तोड़ने के लिए विजयी हुआ है। प्रकाशित वाक्य 5:5,
यहूदा के गोत्र का सिंह दाऊद की जड़ भी है, वो दाऊद का पुत्र भी है और वो दाऊद का प्रभु भी है। यहूदा के गोत्र के सिंह द्वारा प्रस्तुत संबद्धता ये दर्शाती है कि जब यहूदा के गोत्र का सिंह किसी सत्य पर मोहर लगाता है या उसकी मोहर खोलता है, तो वो ऐसा पहले उल्लेख के नियम को लागू करके करता है जो किसी बात का अंत उसकी शुरुआत से पहचानता है, जैसा कि यीशु के दाऊद की जड़ होने से प्रदर्शित है। जब किसी सत्य की मुहर अंत के एक समय पर खोली जाती है, तो एक शुद्धिकरण प्रक्रिया आरंभ होती है, जैसा कि दानियेल 12 में दर्शाया गया है।
यहूदा के गोत्र का सिंह ही वो था जिसने पुस्तक की मूक खोली और यूहन्ना को ये प्रकाशन दिया कि इन अंतिम दिनों में क्या होना था। दानियेल अपनी गवाही देने के लिए अपने भाग में खड़ा रहा, जो अंत के समय तक मुहर बंद रही, जब हमारे संसार में प्रथम स्वर्गदूत का संदेश घोषित किया जाना था। ये बातें इन अंतिम दिनों में अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, परंतु जबकि बहुत से शुद्ध किए जाएंगे और उजले बनाए जाएंगे और परखे जाएंगे, दुष्ट दुष्टता ही करेंगे और दुष्टों में से कोई नहीं समझेगा। मैन्युस्क्रिप्ट रिलीजेस, वॉल्यूम 18:15-15।
यहूदा के गोत्र के सिंह के रूप में यीशु का कार्य अनंत महत्व का है, परंतु दुष्टों में से कोई भी उसके कार्य को या उस संदेश को, जिसकी मोहर खुल चुकी है, नहीं समझेगा।
और उसने कहा, दानियल, तू अपनी राह चला जा, क्योंकि ये वचन अंत समय तक बंद और मोहर बंद है। बहुत से लोग शुद्ध किए जाएंगे, उजले बनाए जाएंगे और परखे जाएंगे, परंतु दुष्ट दुष्टता करते रहेंगे, और दुष्टों में से कोई नहीं समझेगा, परंतु बुद्धिमान समझेंगे। दानियल 12:9-10।
परीक्षण की प्रक्रिया 3 चरणों द्वारा दर्शाई गई है, शुद्ध किया गया, श्वेत बनाया गया और परखा गया। ये 3 चरण सनातन सुसमाचार के 3 चरणों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो प्रथम स्वर्गदूत के संदेश में इस प्रकार दर्शाए गए हैं। परमेश्वर का भय मानो, शुद्ध किया गया, उसे महिमा दो, श्वेत बनाया गया, क्योंकि उसके न्याय का समय आ गया है, परखा गया। वे 3 चरण सत्य हैं, जैसा कि इब्रानी वर्णमाला के प्रथम 13वें और अंतिम अक्षर से प्रदर्शित होता है, और जब उन अक्षरों को उसी क्रम में एक साथ रखा जाता है, तो इब्रानी शब्द सत्य बनता है। वे 3 कदम मार्ग है, क्योंकि आसाफ के अनुसार भजन संहिता 17:13 में परमेश्वर का मार्ग पवित्र स्थान में है, जहां प्रांगण में रक्त बहाए जाने से पापी शुद्ध किया जाता है। उसके बाद वो रक्त पवित्र स्थान में ले जाया जाता है, जो पवित्रीकरण का प्रतिनिधित्व करता है, जो उजला बनाया जाना की प्रक्रिया है।
और प्राचीनों में से एक ने मुझे उत्तर देकर कहा, ये जो उजले वस्त्र पहने हुए हैं, ये कौन है और ये कहाँ से आए हैं? मैंने उससे कहा, हे प्रभु, तू ही जानता है। तब उसने मुझसे कहा, ये वे हैं जो बड़े क्लेश से निकलकर आए हैं,
और उन्होंने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर उजले कर लिए हैं। प्रकाशित वाक्य 7:13-14।
धर्मी ठहराया गया और पवित्र किया गया पापी, तब परम पवित्र स्थान द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए न्याय में परखे जाने के लिए तैयार होता है। यीशु मार्ग, सत्य और जीवन है। मार्ग आरंभ है, सत्य मध्य है और जीवन अंत है। यदि हम पहले चरण द्वारा शुद्ध किए गए हैं, तो हम मार्ग पर हैं, जो धर्मी ठहराए गए लोगों का पथ है।
परंतु धर्मियों का मार्ग भोर के उजियाले के समान है, जो पूरा दिन होने तक अधिकाधिक चमकता जाता है। नीति वचन 4:18।
दूसरा कदम है धार्मिकता का वो प्रगटीकरण जो उसके सत्य के द्वारा संपन्न होता है, क्योंकि उसका वचन सत्य है।
उन्हें तेरे सत्य के द्वारा पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। यूहन्ना 17:17।
धर्मी ठहराए गए लोगों का प्रतिनिधित्व पहला चरण करता है, पवित्र किए गए लोगों का प्रतिनिधित्व दूसरा चरण करता है। पहले दो चरण उन लोगों को जो धर्मी ठहराए गए और पवित्र किए गए हैं न्याय में प्रवेश करने और अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए तैयार करते हैं। यीशु ही मार्ग, सत्य और जीवन है।
भीतर की धार्मिकता की गवाही बाहरी धार्मिकता देती है। जो भीतर से धर्मी है वो कठोर हृदय और निष्करण नहीं होता, बल्कि दिन प्रतिदिन वो मसीह की प्रतिमा के समान बनता जाता है, सामर्थ्य से सामर्थ्य की ओर अग्रसर होते हुए। जो सत्य के द्वारा पवित्र किया जा रहा है वो आत्मसंयमी होगा और तब तक मसीह के पदचिन्हों पर चलेगा जब तक कि अनुग्रह महिमा में विलीन न हो जाए। जिस धार्मिकता से हम धर्मी ठहराए जाते हैं वो आरोपित है, जिस धार्मिकता से हम पवित्र किए जाते हैं वो प्रदत्त है। पहली हमें स्वर्ग का अधिकार देती है, दूसरी हमें स्वर्ग के योग्य बनाती है। रिव्यू एंड हेरल्ड 4 जून 1895।
यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 14-17 तक बार बार इस कृति को उठाया गया है कि जब मसीह उन्हें छोड़कर अपने पिता के पास जाते हैं तो चेलों की प्रतिक्रिया क्या होती है। वो लौट आने का वचन देता है और वो समझते थे, यद्यपि चेले नहीं समझते थे, कि शीघ्र आने वाला संकट गहरी निराशा उत्पन्न करेगा। इन चार अध्यायों में पवित्र आत्मा की कम्फर्टर के रूप में पहचान और परिभाषा बुनी हुई है। यूहन्ना के सुसमाचार में पवित्र आत्मा को 4 बार कम्फर्टर कहा गया है और 1 बार यूहन्ना के पहले पत्र में, पर वहां इस शब्द का अनुवाद एडवोकेट किया गया है। ये शब्द नए नियम में और कहीं नहीं मिलता। पुराने नियम में एक इब्रानी शब्द है जिसका अनुवाद सांत्वना देने वाला के रूप में उपदेशक 4:17 और विलाप गीत अध्याय 1:9-16 में किया गया है। इन तीनों संदर्भों में बताया गया है कि अत्याचारियों ने परमेश्वर की प्रजा पर अत्याचार किया है और वे जिस क्लेश और निराशा में पड़े हैं उसमें उन्हें सहारा देने वाला कोई सांत्वनादाता नहीं है। पवित्र आत्मा की पहचान सांत्वनादाता के रूप में उस खंड में प्रस्तुत की गई है जिसमें यीशु शिष्यों को उस महान निराशा के लिए तैयार करने का प्रयास कर रहे हैं जो बस कुछ ही घंटों बाद आने वाली है। उस संदर्भ में वे ये जोर देते हैं कि अपनी अनुपस्थिति में भी पवित्र आत्मा उन्हें सांत्वना देने हेतु उपस्थित रहेगा। सांत्वनादाता के संदर्भ में पवित्र आत्मा की पहचान करते हुए यीशु उस कार्य की विशेषताएं स्पष्ट करते हैं जिसे सांत्वनादाता संपन्न करेगा। यीशु द्वारा अपने प्रस्थान और वापसी का बार बार किया गया उल्लेख उसी विषय को उस अंश के मुख्य विषय के संदर्भ में सूची में सबसे ऊपर रखता है। यूहन्ना 14:2-4, 18, 19, 28, 16:5-7, 10, 28, 17:11-13 वे आयतें हैं जो सीधे तौर पर 10 कुंवारियों के दृष्टांत में विलंब के समय को संबोधित करती हैं। उपर्युक्त आयतों के साथ निम्नलिखित खंड भी शामिल है जो पुनरावृत्ति के माध्यम से इस विलंब के समय को रेखांकित करता है, क्योंकि प्रभु ऐसी बातों की पुनरावृत्ति नहीं करते जिनका कोई बड़ा महत्व नहीं होता।
थोड़े समय में तुम मुझे नहीं देखोगे और फिर थोड़े समय में तुम मुझे देखोगे, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। तब उसके कुछ चेलों ने आपस में कहा, ये वो हमसे क्या कह रहा है, थोड़े समय में तुम मुझे नहीं देखोगे और फिर थोड़े समय में तुम मुझे देखोगे, और क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। इसलिए वे बोले, वो थोड़े समय कहकर क्या कहना चाहता है, हम नहीं समझते कि वो क्या कह रहा है। अब यीशु ने जान लिया कि वे उससे पूछना चाहते हैं और उनसे कहा, क्या तुम आपस में इस बात की चर्चा कर रहे हो कि मैंने कहा थोड़े समय में तुम मुझे नहीं देखोगे और फिर थोड़े समय में तुम मुझे देखोगे? मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, तुम रोओगे और विलाप करोगे, पर संसार आनंद करेगा। तुम शोकित होगे, पर तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। जब कोई स्त्री प्रसव पीड़ा में होती है तो उसे कष्ट होता है, क्योंकि उसकी घड़ी आ गई है। परंतु जब वो बच्चे को जन्म दे देती है तो एक मनुष्य के संसार में जन्म लेने के आनंद के कारण वो उस पीड़ा को फिर याद नहीं करती। और अब तुम भी शोकित हो, पर मैं तुमसे फिर मिलूंगा और तुम्हारा मन आनंदित होगा, और तुम्हारा ये आनंद तुमसे कोई छीन नहीं सकेगा। यूहन्ना शुदासन 16:22।
अध्याय 14-17 तक कम से कम 21 पद उस समयावधि का उल्लेख करते हैं जिसमें शिष्यों को मसीह की वापसी की प्रतीक्षा करनी होगी। वो समयावधि मसीह की मृत्यु से आरंभ होकर उनके पिता के पास से उनके लौटने तक चलेगी। उन्हें उसकी वापसी के लिए प्रतीक्षा करने का जो समय था वो 10 कुमारियों के दृष्टांत में वर्णित विलंब के समय का प्रतीक है, और लूका के वर्णन में इम्माउस के चेलों की कथा की भांति क्रूस की निराशा भविष्यवाणी के रूप में पहली निराशा के बाद आने वाले विलंब के समय की शुरुआत का प्रतिरूप ठहरती है। बाइबल की पहली पुस्तक के पहले अंश में हमें सृष्टि का वृत्तांत मिलता है और हम स्वर्गीय त्रयी की 3 व्यक्तियों को पहचानते हैं। बाइबल की अंतिम पुस्तक के पहले अंश में हमें स्वर्गीय त्रयी की 3 व्यक्तियां मिलती हैं। जिन 4 अध्यायों पर हम विचार कर रहे हैं उनमें भी हमें स्वर्गीय त्रयी की 3 व्यक्तियां मिलती हैं। इस तथ्य को पहचानने से हम यूहन्ना की 4 अध्यायों में उत्पत्ति अध्याय 1:1 से अध्याय 2:3 तक की भविष्य सूचक रेखा और प्रकाशित वाक्य अध्याय 1:1 से 11 तक के साथ समांतर रखकर देख सकते हैं। इस खंड में यीशु थॉमस से कहते हैं कि यदि किसी ने यीशु को देखा है तो उसने पिता को देखा है। ये खंड ये भी बताता है कि मसीह ने अपनी उपस्थिति से चेलों को सांत्वना दी, पर जब वो चला जाएगा तो वो एक दूसरा सांत्वनादाता भेजेगा। पवित्र आत्मा सांत्वनादाता है, पर मसीह भी सांत्वनादाता थे।
यदि तुम मुझे जानते तो मेरे पिता को भी जानते, और अब से तुम उन्हें जानते हो और उन्हें देखा भी है। फिलिप्पुस ने उससे कहा, प्रभु हमें पिता को दिखा दे तो ये हमारे लिए पर्याप्त होगा। यीशु ने उससे कहा, क्या मैं इतने समय से तुम्हारे साथ हूं और फिर भी फिलिप्पुस तुमने मुझे नहीं जाना? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है, फिर तुम कैसे कहते हो हमें पिता को दिखा? यूहन्ना 14:9-5।
थॉमस एडवेंटिज्म में उन लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जो स्वर्गीय त्रय के संबंध की गवाही को मानने से इनकार करते हैं, इस तथ्य के बावजूद कि संभवतः उन्होंने उन गवाहियों को बार बार पढ़ा है जो उस सत्य की पुष्टि करती हैं।
और मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक और सांत्वना देने वाला देगा कि वो सदा तुम्हारे साथ बना रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वो ना उसे देखता है ना उसे जानता है, परंतु तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और तुम में होगा। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। थोड़े ही समय में संसार मुझे फिर नहीं देखेगा, परंतु तुम मुझे देखोगे, क्योंकि मैं जीवित हूं तुम भी जीवित रहोगे। यूहन्ना 14:19।
यदि हमने यीशु को देखा है तो हमने पिता को देखा है। यीशु सांत्वना करता है और पवित्र आत्मा एक अन्य सांत्वना करता है। यदि हमने यीशु को देखा है तो हमने पिता को देखा है और हमने सांत्वनाकर्ता को भी देखा है। बाइबल में सांत्वनाकर्ता शब्द का जो 5 बार उपयोग हुआ है वे सभी प्रेरित यूहन्ना द्वारा किए गए हैं। 5वें संदर्भ में इस शब्द का अनुवाद अधिवक्ता के रूप में किया गया है।
हे मेरे बालको, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप न करो, और यदि कोई पाप करे तो हमारे पास पिता के पास एक अधिवक्ता है, धर्मी यीशु मसीह। 1 यूहन्ना 2:1।
यदि कोई मनुष्य पाप करे तो हमारे पास एक सांत्वना करता है, धर्मी यीशु मसीह। अधिवक्ता वो है जो पापी की ओर से मध्यस्थता करता है, पौलुस यीशु के कार्य को हमारे अधिवक्ता के रूप में पहचानता है।
कौन है जो दोषी ठहराता है? मसीही वो है जो मर गया, बल्कि जो फिर जी उठा, जो परमेश्वर की दाहिनी ओर भी है और जो हमारे लिए भी विनती करता है। रोमियो 8:36।
यीशु पापियों के अधिवक्ता, जिसमें ये भी शामिल है कि वे सांत्वना करता है। उसी अध्याय में पौलुस पहले ही ये बता चुके थे कि पवित्र आत्मा भी हमारी ओर से मध्यस्थता करता है।
उसी प्रकार आत्मा भी हमारी दुर्बलताओं में सहायता करता है, क्योंकि हमें जैसा चाहिए वैसा क्या प्रार्थना करें यह हम नहीं जानते, परंतु आत्मा स्वयं ऐसी अकथनीय कराहों के साथ हमारी ओर से मध्यस्थता करता है। और जो हृदयों की खोज करता है वो जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार पवित्र जनों के लिए मध्यस्थता करता है। रोमियो 8:26-27।
यीशु और पवित्र आत्मा दोनों को सांत्वनाकर्ता के रूप में पहचाना गया है, और इसलिए वे दोनों हमारे लिए मध्यस्थता करने वाले अधिवक्ता हैं। जिस यूहन्ना के खंड पर हम विचार कर रहे हैं उसमें स्वर्गीय त्रयी की तीनों व्यक्तियां उपस्थित हैं, और जब इसे बाइबल की पहली पुस्तक की पहली गवाही तथा बाइबल की अंतिम पुस्तक की पहली गवाही के साथ मिलाकर देखा जाता है तो ईश्वरत्व की इन तीनों व्यक्तियों के संबंध और कार्य के विषय में प्रकाश और अधिक बढ़ जाता है।
पृथ्वी की वस्तुओं से पिता का वर्णन नहीं किया जा सकता। पिता देह में परमेश्वरत्व की सारी परिपूर्णता है और मर्त्य दृष्टि के लिए अदृश्य है। पुत्र परमेश्वरत्व की सारी परिपूर्णता का प्रकट रूप है। परमेश्वर का वचन उसे उसके तत्व की छाप ठहराता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यहाँ पिता का व्यक्तित्व प्रकट किया गया है। वह सांत्वना देने वाला, जिसे मसीह ने स्वर्गारोहण के बाद भेजने का वादा किया था, परमेश्वरत्व की समस्त परिपूर्णता में आत्मा है, जो उन सबके लिए दैवी अनुग्रह की शक्ति को प्रकट करता है जो मसीह को व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं और उस पर विश्वास करते हैं। स्वर्गीय त्रयी में तीन जीवित व्यक्तित्व हैं। इन तीन शक्तियों, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में, जो लोग जीवित विश्वास के द्वारा मसीह को ग्रहण करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, और ये शक्तियाँ स्वर्ग राज्य के आज्ञाकारी जनों के साथ मिलकर मसीह में नया जीवन जीने के उनके प्रयासों में सहयोग करेंगी। पापी को क्या करना चाहिए? मसीह पर विश्वास करना। वो मसीह का है क्योंकि उसे परमेश्वर के पुत्र के लहू से खरीदा गया है। परीक्षा और परख के द्वारा उद्धारकर्ता ने मनुष्यों को पाप की दास्ता से छुड़ाया, तो फिर पाप से उद्धार पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? प्रभु यीशु मसीह पर पाप क्षमा करने वाले उद्धारकर्ता के रूप में विश्वास करें, जो अपना पाप स्वीकार करता है और अपना हृदय दीन करता है, उसे क्षमा मिलती है। यीशु पाप क्षमा करने वाले उद्धारकर्ता है और अनंत परमेश्वर के इकलौते पुत्र भी हैं। क्षमा पाया हुआ पापी हमारे पाप से छुड़ाने वाले यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर से मेल कर लिया जाता है। पवित्रता के मार्ग में बने रहते हुए वो परमेश्वर के अनुग्रह के अधीन रहता है। उसे पूर्ण उद्धार, आनंद और शांति और परमेश्वर से आने वाली सच्ची बुद्धि प्राप्त होती है। यीशु मसीह के प्रायश्चितकारी रक्त पर विश्वास ही क्षमादान का आश्वासन है। मसीह सब पापों को धोकर शुद्ध कर सकते हैं। उस शक्ति पर प्रतिदिन सरल भरोसा मनुष्य को ये पहचानने की तीक्ष्ण बुद्धि देगा कि इन अंतिम दिनों में क्या चीज आत्मा को पाप के बंधन से बचाए रखेगी। विश्वास और प्रार्थना द्वारा मसीह के ज्ञान के माध्यम से उसे अपना उद्धार स्वयं सिद्ध करना है। पवित्र आत्मा पहचानता है और हमें समस्त सत्य की ओर मार्गदर्शन करता है। परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र दे दिया है, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। मसीह पापी का उद्धार करता है। मसीह की मृत्यु ने पापी को छुड़ाया है। ये हमारी एकमात्र आशा है। यदि हम अपने आप को पूर्णतः समर्पित करें और मसीह के सद्गुणों का अभ्यास करें तो हम अनंत जीवन का पुरस्कार पाएंगे। जो पुत्र पर विश्वास करता है उसके पास पिता भी है। जो पिता और पुत्र पर निरंतर विश्वास रखता है उसके पास पवित्र आत्मा भी है। पवित्र आत्मा उसका सांत्वनादाता है और ऐसा व्यक्ति कभी सत्य से विमुख नहीं होता। बाइबल प्रशिक्षण स्कूल, 1 मार्च 1906।
स्वर्गीय त्रयी के कार्य और संबंध के बारे में प्राप्त अतिरिक्त प्रकाश के अलावा उक्त खंड में स्वर्गीय त्रयी की पहचान ये गवाही देती है कि ये चार अध्याय उस संदेश के साथ संरेखित किए जाने हैं जिसे अब यहूदा के गोत्र के सिंह द्वारा मोह मुक्त किया जा रहा है। इम्माउस के शिष्यों की कहानी का साक्षी तीन गवाहियों का प्रतिनिधित्व करता है जो ये पहचानती हैं कि क्रूस के बाद आया निराशा और प्रतीक्षा का काल। उस निराशा और प्रतीक्षा के काल का प्रतिनिधित्व करता है जो पहली निराशा के बाद आता है। एक और साक्षी है जो ये समर्थन करता है कि यूहन्ना के चार अध्यायों में दर्शाया गया इतिहास पहली निराशा की परिस्थितियों का प्रतिनिधित्व करता है। परमेश्वर के वचन में उल्लिखित पहली सच्चाई अर्थात सृष्टि की कथा का अंतिम पद तीन शब्दों पर समाप्त होता है और उन प्रत्येक शब्दों की शुरुआत उन तीन अक्षरों में से एक से होती है जो ट्रूथ शब्द बनाते हैं और ये सही क्रम में होता है। उत्पत्ति में सृष्टि की कथा इन द बिगिनिंग शब्दों से आरंभ होती है और गॉड क्रिएटेड एंड मेड इन तीन शब्दों पर समाप्त होती है। उन तीन शब्दों के पहले अक्षर जब जोड़े जाते हैं तो सत्य शब्द बनता है। सृष्टि वृत्तांत आरंभ से शुरू होता है और उस शब्द पर समाप्त होता है जो अल्फा और ओमेगा का प्रतिनिधित्व करने वाले अक्षरों द्वारा प्रतीकात्मक रूप से दर्शाया गया है। इसी प्रकार बाइबल की अंतिम पुस्तक के प्रारंभिक खंड में यीशु को दो बार अल्फा और ओमेगा, आरंभ और अंत, प्रथम और अंतिम के रूप में पहचाना गया है। वे तीन अक्षर जो अल्फा और ओमेगा का प्रतिनिधित्व करते हैं ये एक और साक्ष्य देते हैं कि यूहन्ना का वो खंड उत्पत्ति की शुरुआत की भविष्यवाणी की रेखा और प्रकाशित वाक्य की शुरुआत की भविष्यवाणी की रेखा के साथ जोड़कर देखा जाना चाहिए। उस साक्ष्य को सांत्वनादाता के कार्य के वर्णन में पहचाना जाता है। सांत्वनादाता का कार्य उन्हीं तीन हिब्रू अक्षरों द्वारा निरूपित तीन चरणीय कार्य है। अल्फा और ओमेगा की छाप हमें इन चार अध्यायों को यीशु मसीह के प्रकाशित वाक्य के उस संदेश के संदर्भ में रखने की अनुमति देती है जो परख की अवधि समाप्त होने से ठीक पहले उन्मोचित किया जाता है। सात गर्जन, चार विशिष्ट मार्ग चिन्ह, समय बिंदु और तीन विशिष्ट समय अवधियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये समय अवधियां उस मार्ग चिन्ह से आरंभ होती हैं जो एक स्वर्गदूत के अवतरण का है जो अपनी महिमा से पृथ्वी को प्रकाशित करने वाला है। वो मार्ग चिन्ह समय का एक बिंदु था। दूसरा मार्ग चिन्ह समय बिंदु पहली निराशा है जो प्रतीक्षा काल की शुरुआत कराता है। प्रतीक्षा काल तीसरे मार्ग चिन्ह समय बिंदु तक ले जाता है जहां एक सत्य की मुहर खुलती है और उससे एक आंदोलन उत्पन्न होता है। वो आंदोलन चौथे मार्ग चिन्ह समय बिंदु पर जो न्याय के रूप में दर्शाया गया है समाप्त होता है। ये चार मार्ग चिन्ह और वे तीन समय अवधियां प्रत्येक एक गर्जन का प्रतिनिधित्व करते हैं और कुल मिलाकर सात गर्जन होते हैं। वे चार तीन के संयोजन का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। पूर्वलेखों में हमने पहचाना है कि सात कलीसियाओं, सात मोहरों और सात तुरहियों के संबंध में अग्रदूतों की समझ चार तीन का संयोजन को स्वीकार करती है। पहली चार कलीसियाएं, मोहरें और तुरहियां अंतिम तीन कलीसियाओं, मोहरों और तुरहियों से भिन्न है। सात गर्जनाएं चार मार्ग चिन्हों का प्रतिनिधित्व करती हैं, पर उन चार मार्ग चिन्हों के भीतर तीन कालखंड हैं। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में चार और तीन का दैवीय संयोजन तीन साक्षियों, कलीसियाएं, मोहरे और तुरहिया पर स्थापित है और वे साक्षी प्रकाशित वाक्य की सात गर्जनाओं के चार और तीन संयोजन की वैधता की गवाही देते हैं। फिर भी सात गर्जनों द्वारा दर्शाई गई इतिहास रेखा के भीतर एक और छिपी और पृथक भविष्यवाणी रेखा अंतर्निहित है जिसमें तीन मार चिन्ह हैं जो सात गर्जन के रूप में प्रस्तुत प्रतीक से भिन्न हैं। अतः जब हम सात गर्जनों के भविष्य सूचक संबंध का उस छिपे हुए इतिहास से विचार करते हैं जिसकी मुहर अब खुल रही है तो पाते हैं कि सात गर्जन चार मार्ग चिन्ह समय बिंदु प्रस्तुत करते हैं और छिपा हुआ इतिहास तीन मार्ग चिन्ह समय बिंदु प्रस्तुत करता है। कलीसियाओं, मुहरों, तुरहियों और गर्जनों की भांति छिपा हुआ इतिहास तीन मार्ग चिन्ह दर्शाता है जो सात गर्जनों के चार मार्ग चिन्हों से जुड़े हैं। छिपा हुआ इतिहास भी तीन चार का संयोजन रखता है। सात गर्जनाओं के भीतर निहित गुप्त इतिहास में तीन विशिष्ट मार्ग चिन्ह हैं जो प्रत्येक समय बिंदु है, और उन तीन मार्ग चिह्नों में से पहला और अंतिम एक निराशा का प्रतिनिधित्व करते हैं। पहले और दूसरे मार्ग चिह्न के बीच एक विशिष्ट समयावधि है, और दूसरे और तीसरे समय बिंदु के बीच भी एक विशिष्ट समयावधि है। डिसअपॉइंटमेंट शब्द छूटी हुई मुलाकात की अवधारणा से विकसित हुआ है और अपनी परिभाषा में समय बिंदु पर बल देता है। आधी रात भी एक विशिष्ट समय है। गुप्त इतिहास को तीन समय बिंदुओं द्वारा दर्शाया गया है, जो दो समयावधियों से अलग किए गए हैं, प्रतीक्षा का समय और सातवें महीने का आंदोलन। गुप्त इतिहास का पहला मार्ग चिह्न एक निराशा की पहचान करता है, और अंतिम मार्ग चिह्न भी एक निराशा की पहचान करता है। अतः पहली निराशा से लेकर अंतिम निराशा तक भविष्यवाणी की एक गुप्त रेखा है, जो सभी सुधार रेखाओं की तरह वही तीन चरण समाहित करती है। इसमें अल्फा और ओमेगा की पहचान भी निहित है, क्योंकि सत्य बनाने वाले तीन अक्षर उन तीन मार्ग चिन्हों के अनुरूप है जो निराशा से आरंभ होते हैं और निराशा पर समाप्त होते हैं। सात गर्जनाओं के भीतर वह गुप्त इतिहास वही सत्य है जिसे यहूदा के गोत्र का सिंह वर्तमान में मुहर खोल रहा है। यूहन्ना में जिस खंड पर हम विचार कर रहे हैं उसका परिचय पिछले अध्याय में अंतिम भोज के साथ होता है, इस बात पर बल देते हुए कि इन चार अध्यायों का संदेश खाया जाना है। वे चार अध्याय गेतसमनी की ओर जाते हुए समाप्त होते हैं। वृत्तांत भोजन से शुरू होकर क्रूस के संकट के आरंभ तक की अवधि में घटित होता है। भविष्य सूचक दृष्टि से इन चार अध्यायों का प्रसंग उस अंतिम संदेश को परिभाषित करता है जिसे न्याय से पहले खाया जाना है। जो संदेश न्याय के समापन की ओर ले जाता है वही संदेश है जिसकी मुहर प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में न्याय के समापन से ठीक पहले खोली जाती है। चेले और यीशु भविष्यवाणी के इतिहास के उस बिंदु पर हैं जहां उन्हें विलंब के समय के बारे में बताया जा रहा है। मिलराइटों के इतिहास में प्रभु ने अपना हाथ हटा लिया ताकि आधी रात की पुकार के संदेश की समझ प्रकट हो सके, परंतु उसी समझ ने जिसने सैमुअल स्नो के संदेश को जन्म दिया, मिलराइटों को ये भी बताया कि वे 10 कुंवारियों के विलंब के समय में थे। चेलों ने अभी अभी अंतिम भोज ग्रहण किया था, और जब वे उस संदेश को आत्मसात कर रहे थे तब मसीह ने यूहन्ना के चार अध्यायों में विलंब के समय की व्याख्या की। सैमुअल स्नो की समझ को लेखों की एक श्रृंखला के रूप में प्रलेखित किया जा सकता है जिसने उस अंतिम समझ को विकसित किया जो मिडनाइट क्राय संदेश के रूप में व्यक्त की गई थी। जब उनका संदेश विकसित हो रहा था उन्होंने कैंप मीटिंग्स की एक श्रृंखला में भी ये संदेश प्रस्तुत किया। कैंप मीटिंग्स की ओर ले जाने वाली लेखों की वो श्रृंखला अंततः उन्हें एक्सिटर कैंप मीटिंग तक ले गई जो 6 दिनों तक चली। भविष्यवाणी के दृष्टिकोण से मिडनाइट क्राय का संदेश समय की एक अवधि में क्रमिक रूप से विकसित होता है। जॉन के चार अध्याय उस भविष्य सूचक इतिहास में घटित होते हैं जहां यह संदेश विकसित हो रहा है। यूहन्ना के चार अध्यायों में पवित्र आत्मा के कार्य को तीन चरणों के रूप में परिभाषित किया गया है, पाप का बोध, धार्मिकता का बोध और न्याय का बोध। ये तीन चरण सात गर्जनाओं में निहित गुप्त इतिहास के भी तीन मार्ग चिन्ह हैं।
तथापि मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, तुम्हारे लिए ये भला है कि मैं चला जाऊँ, क्योंकि यदि मैं न जाऊँ तो सांत्वनादाता तुम्हारे पास न आएगा, परंतु यदि मैं चला जाऊँ तो मैं उसे तुम्हारे पास भेजूँगा, और जब वो आएगा तो वो संसार को पाप, धर्म और न्याय के विषय में दोषी ठहराएगा। पाप के विषय में, क्योंकि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते। धर्म के विषय में, क्योंकि मैं अपने पिता के पास जाता हूँ और तुम मुझे फिर नहीं देखोगे। न्याय के विषय में, क्योंकि इस संसार के प्रधान का न्याय हो चुका है। मुझे अभी भी बहुत सी बातें तुम्हें कहनी हैं, परंतु तुम अभी उन्हें सह नहीं सकते। तो भी जब वो अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो वो तुम्हें सारे सत्य में मार्गदर्शन करेगा, क्योंकि वो अपनी ओर से न बोलेगा, परंतु जो कुछ वो सुनेगा वही बोलेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। वो मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वो जो कुछ मेरा है उसे ग्रहण करेगा और तुम्हें दिखाएगा। यूहन्ना 16:7-14।
मिलराइट इतिहास में आधी रात की पुकार के समय विलंब का समय समाप्त करने के लिए यीशु वापस नहीं आए। उन्होंने अपना हाथ हटा लिया और पवित्र आत्मा को उंडेल दिया या भेज दिया। पवित्र आत्मा, जिसे सांत्वना दाता के रूप में दर्शाया गया है, निराशा को दूर करने आया। वो चुने हुए लोगों को सांत्वना देने आया जो असफल भविष्यवाणी के कारण उलझन में थे। हम पहले भी ये इंगित कर चुके हैं कि प्रेरित यूहन्ना, यहेजकेल और यिर्मयाह, इन सबको मुंह में मधु के समान मीठी छोटी पुस्तिका खाते हुए दिखाया गया है। उन तीनों भविष्यद्वक्ताओं के बीच एक जानबूझकर किया गया भेद है जो अक्सर अनदेखा रह जाता है। ये यहेजकेल का उपयोग उन लोगों को दर्शाने के लिए किया जाता है जिन्होंने छोटी पुस्तक को खाया और जिन्हें परमेश्वर की धर्मत्यागी कलीसिया तक पहुंचाने के लिए एक संदेश दिया गया है। यहेजकेल ये दर्शाता है कि जो पुस्तक खाई जाती है वही उस कार्य को निर्धारित करती है जिसे उसके बाद पूरा किया जाना है। वो उस संदेश का प्रतिनिधित्व करता है जो परमेश्वर के पूर्व में चुने हुए लोगों को दिया गया है। उसका संदेश ही परमेश्वर के पूर्व में चुने हुए लोगों को आग के लिए नियत गठरों में बांध देता है। यूहन्ना के 4 अध्यायों में यीशु यहेजकेल के कार्य का उद्देश्य बताता है।
उस वचन को स्मरण रखो जो मैंने तुमसे कहा था, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता। यदि उन्होंने मेरा उत्पीड़न किया है तो वे तुम्हारा भी करेंगे। यदि उन्होंने मेरे वचन का पालन किया है तो वे तुम्हारे वचन का भी पालन करेंगे। परंतु ये सब वे मेरे नाम के कारण तुम्हारे साथ करेंगे, क्योंकि वे उसे नहीं जानते जिसने मुझे भेजा। यदि मैं न आया होता और उनसे न कहा होता तो वे पापी न ठहरते, पर अब उनके पाप का कोई बहाना नहीं है। जो मुझसे घृणा करता है वो मेरे पिता से भी घृणा करता है। यदि मैंने उनके बीच वे काम न किए होते जो किसी और ने नहीं किए तो वे पापी न ठहरते, पर अब उन्होंने देखा भी है और मुझसे और मेरे पिता से दोनों से घृणा भी की है। पर यह इसलिए हुआ कि वो वचन पूरा हो जो उनकी व्यवस्था में लिखा है, उन्होंने बिना कारण मुझसे घृणा की। पर जब सहायक आएगा जिसे मैं पिता की ओर से तुम्हारे पास भेजूंगा, सत्य का आत्मा जो पिता से निकलता है, वह मेरी गवाही देगा। यूहन्ना 15:20।
यहेजकेल का कार्य, जो तब शुरू हुआ जब उसने पुस्तक खाई, एक ऐसे संदेश की प्रस्तुति का प्रतिनिधित्व करता है जिसे अस्वीकार किया जाएगा। परंतु वही अस्वीकार इस बात का प्रमाण है कि वे परमेश्वर से घृणा करते हैं और उन्होंने अपने परक्काल के प्याले को पूरी तरह भर दिया है।
और उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य पुत्र, मैं तुझे इज़राइल की संतानों के पास, उस विद्रोही जाति के पास भेजता हूँ जिसने मेरे विरुद्ध विद्रोह किया है। वे और उनके पितृजन आज तक मेरे विरुद्ध अपराध करते आए हैं, क्योंकि वे दुष्ट पुत्र हैं और हठी मन के। मैं तुझे उनके पास भेजता हूँ और तू उनसे कहना, प्रभु यहोवा यूं कहता है, और वे चाहे सुने या ना माने, क्योंकि वे विद्रोही घराना है, फिर भी जान लेंगे कि उनके बीच एक नबी रहा है। यहेजकेल 2:3।
यहेजकेल का कार्य पूर्व वाचा की प्रजा के विरुद्ध एक गवाह के रूप में था, जैसे कि मसीह कुतर्क करने वाले यहूदियों के विरुद्ध थे। और इस प्रकार यहेजकेल का संदेश अंतिम चेतावनी संदेश है जो पूर्व वाचा की प्रजा को खरपतवार के गट्ठर की तरह बांध देता है जो विनाश की आग के लिए नियत है।
तब मैंने तीसरे स्वर्गदूत को देखा। मेरे साथ के स्वर्गदूत ने कहा, भयावह है उसका काम, भयानक है उसका मिशन। वो वही स्वर्गदूत है जो गेहूं को खरपतवार से चुनकर अलग करेगा और स्वर्गीय कोठार के लिए गेहूं को मुहरबंद करेगा या उसे बांधेगा। इन बातों में पूरा मन, पूरा ध्यान लगा रहना चाहिए। प्रारंभिक लेखन 162।
छोटी पुस्तक को खाने से जो कार्य दर्शाया गया है वो तब शुरू होता है जब एक शक्तिशाली स्वर्गदूत अपने हाथ में एक छोटी पुस्तक लिए तरता है। पहले स्वर्गदूत के इतिहास में ये 11 अगस्त 1840 को घटित हुआ और तीसरे स्वर्गदूत के इतिहास में ये 11 सितंबर 2001 को घटित हुआ। वे दोनों तिथियां उन भविष्यवाणियों की पूर्तियां दर्शाती हैं जो क्रमशः दूसरे हाय से जुड़े इस्लाम और तीसरे हाय से जुड़े इस्लाम से संबंधित हैं। इसी कारण यशायाह अध्याय 22 में जब वो फिलाडेल्फियाइयों और लाओदीकियों के लिए दर्शन की तराई में संकट का वर्णन करता है, तो वो पहचानता है कि लाओदीकी, जो 1840 में प्रोटेस्टेंटवाद के चुने हुए लोग थे, और एडवेंटिस्ट, जो 2001 में चुने हुए लोग थे, धनुर्धारियों द्वारा बांधे गए थे। बाइबल की भविष्यवाणी में धनुर्धारी इस्लाम है, और जब 1840 तथा 2001 में इस्लाम से संबंधित वो दर्शन पूरा हुआ, तब पूर्व के चुने हुए लोगों ने इस्लाम की उस भविष्यवाणी को, जैसा कि यहेजकेल द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए लोगों ने प्रस्तुत किया था, अस्वीकार कर दिया। उसी समय वे जंगली घास के समान बांध दिए गए। यहेजकेल का कार्य था उनके पाप को ढकने वाली ओढ़नी को हटाना, जिसे यीशु ने परमेश्वर के प्रति घृणा के रूप में प्रस्तुत किया है।
दर्शन की तराई का भार। अब तुझे क्या हो गया है कि सबके सब छतों पर चढ़ गए हैं? तू हलचल से भरी हुई कोलाहलपूर्ण हर्षित नगरी, तेरे घात किए हुए लोग तलवार से नहीं मारे गए, ना लड़ाई में मरे हैं। तेरे सब प्रधान एक साथ भाग गए हैं, वे धनुर्धारियों के द्वारा बांधे गए हैं। तेरे भीतर जो भी पाए गए, जो दूर तक भाग गए थे, वे सब एक साथ बांध दिए गए हैं। यशाया 22:1-3।
और परमेश्वर बालक इश्माएल के साथ था, और वो बड़ा हुआ और मरुभूमि में रहने लगा और धनुर्धर बन गया। उत्पत्ति 21:20।
जहां दर्शन नहीं होता, वहां लोग नष्ट हो जाते हैं, परंतु जो व्यवस्था का पालन करता है वो धन्य है। नीति वचन 29:18।
यिर्मयाह उन लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जिन्होंने उस समय पुस्तक खाई जब एक शक्तिशाली स्वर्गदूत उतरा, जो अपनी महिमा से पृथ्वी को प्रकाशित करने वाला था, परंतु जिन्होंने 1843 की असफल भविष्यवाणी की निराशा का अनुभव किया। यिर्मयाह भविष्य सूचक रूप से ये विचार करता है कि क्या परमेश्वर ने झूठ बोला था। वो संदर्भ यिर्मयाह को हबक्कूक 2 से जोड़ता है।
मैं अपनी पहरेदारी पर खड़ा रहूंगा और मीनार पर अपने को स्थापित करूंगा, और ये देखने के लिए चौकसी करूंगा कि वो मुझसे क्या कहेगा, और जब मुझे डांटा जाएगा तब मैं क्या उत्तर दूंगा। और प्रभु ने मुझे उत्तर दिया और कहा, दर्शन लिख और उसे पट्टिकाओं पर स्पष्ट लिख दे, ताकि जो उसे पढ़ी वो दौड़ सके, क्योंकि दर्शन अभी भी नियत समय के लिए है, परंतु अंत में वो बोलेगा और झूठ ना बोलेगा। यदि वो विलंब करे तो उसकी प्रतीक्षा कर, क्योंकि वो निश्चय ही आएगा, वो विलंब न करेगा। देखो, जिसका मन फूला हुआ है वो उसके भीतर सीधा नहीं है, परंतु धर्मी अपने विश्वास से जीवित रहेगा। हबक्कूक 2:1-4।
11 अगस्त 1840 से 22 अक्टूबर 1845 तक के पूरे इतिहास का प्रतिनिधित्व करते हुए जॉन का उपयोग उन लोगों का प्रतीक बनाने के लिए किया गया था जिन्होंने मिठास और कड़वी निराशा का अनुभव किया।
तब मैं स्वर्गदूत के पास गया और उससे कहा, मुझे वो छोटी पुस्तक दे। उसने मुझसे कहा, इसे ले और खा ले, ये तेरे पेट को कड़वा कर देगी, पर तेरे मुंह में वो मधु के समान मीठी होगी। तब मैंने स्वर्गदूत के हाथ से वो छोटी पुस्तक ले ली और उसे खा गया, और वो मेरे मुंह में मधु के समान मीठी थी, परंतु जैसे ही मैंने उसे खा लिया मेरा पेट कड़वा हो गया। प्रकाशित वाक्य 10:9-10।
यहेजकेल उस कार्य का प्रतिनिधित्व करता है जिसमें पूर्व में चुनी हुई प्रजा का समापन करने वाला भविष्यवाणी संदेश प्रस्तुत किया जाता है, जिसकी शुरुआत तब हुई जब स्वर्गदूत 11 अगस्त 1840 और 11 सितंबर 2001 को उतरा।
पर तू, हे मनुष्यपु, जो मैं तुझसे कहता हूँ उसे सुन। तू उस विद्रोही घराने के समान विद्रोही मत बन। अपना मुंह खोल और जो मैं तुझे देता हूँ उसे खा। और मैंने देखा तो देखो, मेरे पास एक हाथ भेजा गया, और देखो, उस हाथ में एक पुस्तक का चर्मपत्र था, और उसने उसे मेरे सामने फैलाया, और वो आगे और पीछे दोनों ओर लिखा हुआ था, और उसमें विलाप, शोक और हाय लिखे थे। फिर उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य पु तुत्र, जो कुछ तू पाए उसे खा, इस चर्मपत्र को खा, और जाकर इज़राइल के घराने से बात कर। तब मैंने अपना मुंह खोला और उसने मुझे वो चर्मपत्र खिलाया, और उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य पुत्र, खा ताकि तेरा पेट भरे, और जो चर्मपत्र मैं तुझे देता हूँ उसे अपनी अंतड़ियां भर ले। तब मैंने उसे खाया और वो मेरे मुंह में मधु के समान मीठा था। यहोएज़केल 2:8-3:3।
यिर्मयाह 4:11-1840 से लेकर मध्य रात्रि की पुकार से ठीक पहले तक के इतिहास का प्रतिनिधित्व करता है।
तेरे वचन मिल गए
और मैंने उन्हें खा लिया, और तेरा वचन मेरे लिए मेरे हृदय का हर्ष और आनंद बन गया, क्योंकि मैं तेरे नाम से कहलाता हूँ हे सेनाओं के प्रभु परमेश्वर। मैं ठट्ठा करने वालों की सभा में नहीं बैठा, न ही उनके साथ आनंद मनाया। तेरे हाथ के कारण मैं अकेला बैठा, क्योंकि तूने मुझे आक्रोश से भर दिया है। मेरा दर्द सदा का क्यों है और मेरा घाव असाध्य क्यों है जो भरना नहीं चाहता? क्या तू मेरे लिए सर्वथा झूठा और ऐसे जल के समान होगा जो सूख जाते हैं? इसलिए प्रभु यूं कहता है, यदि तू लौट आए तो मैं तुझे फिर ले आऊँगा और तू मेरे सामने खड़ा होगा, और यदि तू निकृष्ट में से उत्तम को छांट निकाले तो तू मेरे मुख के समान होगा। वे तेरी ओर लौटे परंतु तू उनकी ओर न लौटना, और मैं तुझे इस प्रजा के लिए एक दृढ़ पीतल की दीवार बनाऊंगा। वे तेरे विरुद्ध लड़ेंगे परंतु तुझ पर विजय ना पाएंगे, क्योंकि मैं तुझे बचाने और छुड़ाने के लिए तेरे साथ हूँ, प्रभु कहता है। और मैं तुझे दुष्टों के हाथ से छुड़ा दूंगा और भयानक लोगों के हाथ से तेरा उद्धार करूंगा। यिर्मयाह 15:16-21।
यिर्मयाह हमारे वर्तमान इतिहास और संदेश का प्रतिनिधित्व करता है। वर्तमान संदेश आधी रात की पुकार का संदेश है, जो क्रमशः उस समय विकसित किया जा रहा है जब यिर्मयाह द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए परमेश्वर के लोग आक्रोश से भर गए हैं, ये सोचते हुए कि उनका दर्द सदैव रहने वाला है और उनका घाव असाध्य है, एक ऐसा घाव जो कभी चंगा नहीं होना था। वे उपहास करने वालों की सभा से अलग हो गए हैं। वे अब आनंद नहीं करते जैसे उन्होंने तब किया था जब उन्होंने पहली बार पुस्तक को खाया था और वो उनके हृदय का आनंद बन गई थी। परंतु उस अवस्था में जो हैं उनके लिए भी परामर्श है, यदि तुम लौट आओ, और ये भी कि यदि तुम निकृष्ट में से बहुमूल्य को निकाल लो तो परमेश्वर उनकी ओर लौट आएगा। इब्रानी में इस पद का मैं तुझे फिर ले आऊंगा वाक्यांश ये अर्थ देता है कि यदि वे उसकी ओर लौट आए तो परमेश्वर उनकी ओर लौट आएगा।
इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ, शैतान का विरोध करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। परमेश्वर के निकट आओ और वो तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियो, अपने हाथों को शुद्ध करो, और हे दो मन वालों, अपने हृदयों को पवित्र करो। दुख उठाओ, शोक करो और रो, तुम्हारी हंसी शोक में और तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाए। प्रभु के सामने अपने आप को नम्र बनाओ और वो तुम्हें ऊंचा उठाएगा। याकूब 4:7-10।
यदि वे परमेश्वर के निकट आएंगे तो वो उनके निकट आएगा, यदि वे ये बातें करेंगे तब वे प्रभु के समक्ष खड़े होंगे और वे परमेश्वर के मुख होंगे। आगे वो यिर्मयाह हम को निर्देश देता है कि वो अपनी प्रजा को दुष्टों के विरुद्ध एक दृढ़ पीतल की दीवार बना देगा, और उसके बाद भयानक लोग यिर्मयाह द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए लोगों के विरुद्ध युद्ध छेड़ने वाले हैं। दुष्ट मत्ती की मूर्ख कुआरियों का दानियल द्वारा किया गया प्रतिनिधित्व है। भयानक रविवार के कानून के संकट के दौरान आधुनिक बाबेल के त्रिविध संघ का प्रतिनिधित्व करता है। तीन भविष्यद्वक्ताओं की गवाहियां एक ही इतिहास को संबोधित करती हैं, लेकिन वे उसी इतिहास के तीन भिन्न पहलुओं को संबोधित करती हैं। यिर्मयाह उन लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जिन्होंने अभी अभी पहली निराशा का अनुभव किया है, लेकिन जो अब तक आधी रात की पुकार के मार्ग चिन्ह तक नहीं पहुंचे हैं। 18 जुलाई 2020 से हम इसी अवस्था में हैं। प्रश्न ये है कि क्या हम लौटेंगे? यदि हम लौटते हैं तो हम ठीक उसी समय प्रभु के लिए बोलेंगे जब संयुक्त राज्य अमेरिका ड्रैगन की तरह बोलेगा। यिर्मयाह जो इतिहास चित्रित कर रहा है वही हमारा वर्तमान इतिहास है, और वही इतिहास सात गर्जनाओं के अंतर्निहित तीन गुप्त मार्ग चिन्हों द्वारा निरूपित है। ये वही इतिहास भी है जिसमें यूहन्ना के उस अंश को भविष्य सूचक रूप से रखा गया है, क्योंकि यूहन्ना के 4 अध्यायों का केंद्र बिंदु पवित्र आत्मा का वो कार्य है जिसमें वो यिर्मयाह को सांत्वना देता है, जो ये पूछ रहा है कि कहीं उसने किसी झूठ पर तो विश्वास नहीं कर लिया, और क्या वो संदेश जिसका स्वाद इतना मीठा लगा था वास्तव में विफल जल तो नहीं था। अतः यिर्मयाह 11 सितंबर 2001 से लेकर 18 जुलाई 2020 तक के इतिहास का प्रतिनिधित्व करता है, जब प्रतीक्षा का समय शुरू हुआ, जिसका निरूपण उसके बाद के 3.5 प्रतीकात्मक दिनों से होता है। जब मैं प्रतीकात्मक कहता हूं तो मेरा कराश है किसी समय भविष्यवाणी से नहीं है। मेरा कहना है कि 18 जुलाई 2020 वही समय है जब दो गवाह, बाइबल और भविष्यवाणी की आत्मा को मार डाला गया और प्रकाशित वाक्य अध्याय 11 में उनके मृत शरीर 3.5 दिनों तक सड़क पर पड़े रहे।
और मैं अपने दो गवाहों को सामर्थ दूंगा और वे टाट पहने हुए 1260 दिन तक भविष्यद्वाणी करेंगे। ये वे दो जैतून के वृक्ष और दो दीपदान हैं जो पृथ्वी के परमेश्वर के सामने खड़े हैं, और यदि कोई उन्हें हानि पहुंचाना चाहे तो उनके मुंह से आग निकलकर उनके शत्रुओं को भस्म कर देती है, और यदि कोई उन्हें हानि पहुंचाना चाहे तो वही इसी रीति से मारा जाएगा। इनके पास आकाश को बंद कर देने का अधिकार है ताकि उनकी भविष्यद्वाणी के दिनों में वर्षा न हो, और जलों पर यह अधिकार है कि उन्हें रक्त में बदल दें और जितनी बार चाहें सब प्रकार की विपत्तियों से पृथ्वी को मारें। और जब वे अपनी गवाही पूरी कर चुके होंगे तो वह पशु जो अथाह कुंड से ऊपर आता है उनके विरुद्ध युद्ध करेगा, उन्हें पराजित करेगा और उन्हें मार डालेगा, और उनकी लाशें उस बड़े नगर की सड़क पर पड़ी रहेंगी जो आत्मिक दृष्टि से सदोम और मिस्र कहलाता है, जहां हमारे प्रभु को भी क्रूस पर चढ़ाया गया था। और लोग, कुल, भाषाएं और जातियां 3.5 दिन तक उनकी लाशों को देखेंगे और उनकी लाशों को कब्रों में रखे जाने नहीं देंगे, और पृथ्वी पर रहने वाले उनके कारण आनंद करेंगे, उत्सव मनाएंगे और एक दूसरे को उपहार भेजेंगे, क्योंकि इन दो भविष्यद्वक्ताओं ने पृथ्वी पर रहने वालों को यातना दी थी। प्रकाशित वाक्य 11:10-13।
यिर्मयाह की स्थिति द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य निराशा के बाद परंतु मध्यरात्रि की पुकार से पहले का है। मध्यरात्रि की पुकार के संदेश की आवाज बनने से पहले यिर्मयाह का लौटना आवश्यक था। आज हमारी भी यही स्थिति है। ये यूहन्ना के उन 4 अध्यायों का भी ऐतिहासिक संदर्भ है जिन पर हम विचार कर रहे हैं, और ये वही इतिहास है जिसका प्रतिनिधित्व 7 गर्जनाओं के भीतर निहित गुप्त इतिहास करता है। यदि हम यूहन्ना की 4 अध्यायों में दी गई गवाही में सांत्वनाकर्ता से जुड़े प्रकाश पर विचार करें तो हमें प्रचुर प्रमाण मिलते हैं कि ये विवरण 18 जुलाई 2020 निराशा और प्रतीक्षा का समय, जिसकी मुहर खुल चुकी है, ऐसी मध्यरात्रि की पुकार का संदेश और रविवार के कानून के आगामी न्याय, इन विषयों पर है। ये अध्याय छिपे हुए इतिहास की भविष्यवाणी संबंधी तना पर आधारित है। यदि हम शीघ्र आने वाले संकट में परमेश्वर के मुख के समान होना चाहते हैं तो हमारा वर्तमान काम ये है कि निकृष्ट से बहुमूल्य को अलग निकालें, और जैसा कि याकूब इसी काम को इस प्रकार बताता है, हमें हे पापियों अपने हाथ शुद्ध करो और हे द्विचित्तों अपने हृदय पवित्र करो, दुख उठाओ, विलाप करो और रो, तुम्हारी हंसी शोक में और तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाए, प्रभु के सामने दीन बनो और वो तुम्हें ऊंचा उठाएगा, बहुत निकट भविष्य में एक पताका के समान।
और वो जातियों के लिए एक ध्वज खड़ा करेगा और इसराइल के निकाले हुए लोगों को एकत्र करेगा और पृथ्वी के चारों कोनों से यहूदा के तितर-बितर लोगों को इकट्ठा करेगा। यशाया 11:12।
हम इन 4 अध्यायों पर अपनी चर्चा का समापन अगले लेख में करेंगे।